अंजन सुत बंधन करूं महावीर बजरंग, बिनती है ब्रजेश की तुम रहो हमेशा संग। आदरणीय श्रोतागण, राठौर कैसेट के माध्यम से आज आप लोगों के सामने ये दहेज और गरीबी के मामले में जो कहानी है वो लेके चल रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, आजकल गरीबों की बेटियों की क्या दशा है, मेरी तो समझ में केवल यही आया, और ये कहानी भी कोई विशेष पुरानी नहीं है कि सुनो जी गौर से ये बात ना पुरानी है, सुनो जी गौर से ये बात ना पुरानी है, भरी दुख दर्द गरीबी की ये कहानी है। करते हैं लोग इज्जत जब पैसा पास होता है, करते हैं लोग इज्जत जब पैसा पास होता है, सगा भी यार गरीबी में धोखा देता है, सगा भी यार गरीबी में धोखा देता है। बिना पैसा के नहीं घर में इज्जत होती है, बिना पैसा के नहीं घर में इज्जत होती है, बिना पैसा के जिंदगी भी धूल होती है। गरीबी में जवान कन्या भी घूमे कुआरी, बिना पैसा के घर की नार भी सुनाती गारी, बिना पैसा के घर की नार भी देती गारी। दोस्तों, ये गरीबी की कहानी जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, तो आ जाइए दोस्तों, जैसा कुछ मैंने कानों से सुना, एक लाला जो था बड़ा ही धनवान, जिसके एक इकलौता लड़का था, वक्त जब धीरे धीरे गुजरता चला गया कि सुनो ध्यान दे भ्रातु बात साची बतलाते हैं, और क्या है दशा गरीबन की ये कैसे उम्र बिताते हैं। कैसे समय बिताते हैं, क्या है दशा गरीबन की ये कैसे उम्र बिताते हैं। एक सेठ धनवान बहुत जो पैसा खूब कमाता था, और पत्नी थी करकसा नार, नारी संग दिल नहीं मिलता था। सेठ जो पैसा कमाने वाला, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो करकसा औरत थी। सेठ और उनकी पत्नी के विचार कभी नहीं मिलते थे दोस्तों। एक पुत्र इकलौता
जो शादी के लायक था भाई, और कहे नारियों पति अपने से ले शादी कौ रचवाई। एक दिन लाला की पत्नी ने अपने पति से सलाह मिलाई और ये कहा कि देखो,
हमें अगर शादी करनी है तो किसी धनवान आदमी की लड़की के साथ में, अगर उसने दान दहेज नहीं दिया तो ऐसे विवाह को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मेरा तो विचार ये है, वो अपने पति को समझा करके बोली, अरे मेरे भैया की सुकुमारी जो है चंद्रपद नयुजियारी, सेठानी बोली कि हमारी भतीजी जो है उसके साथ हम अपने पुत्र का विवाह करेंगे। मेरे भैया की सुकुमारी है जो चंद्रपद नयुजियारी, अरे देखन में लड़की नी पारी 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 रे गजब हुई अबारी, देवे दहेज दौलत सारी, सेठानी बोली कि मेरे भैया की लड़की अब देखने में भी बड़ी खूबसूरत है, विचार हमारा यह है कि मैं अपने पुत्र की शादी अपनी भतीजी के साथ में, और मेरा भाई बहुत दौलत देगा। और समझाए कि बोली देखो महाराज, मिले अधिक धन माल ले तत्काल के ब्याह रचाई, मिले है दान दहेज रे के पैसा वालो भाई, भैया समझाए कि सेठानी अपने पति से बोली देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं, बहू चाहे कैसी भी हो लेकिन हमें दौलत चाहिए, भैया जो है वो पैसे वाला है। मिले अधिक धन माल ले तत्काल के ब्याह रचाई, और ब्याह रचाई, मिले है दान दहेज रे के पैसा वालो भाई, लड़की की आदत जा घर लाए कनाई, लड़की की आदत जा घर लाए कनाई, सेठानी ने जब जबात कही कि मेरे भैया की लड़की है उसके साथ में विवाह करो पुत्र का, जो दौलत भी बहुत मिलेगी, तो सेठ समझाए कि बोले देखो तुम नहीं जानती, दौलत से ही कुछ नहीं होता, तुम्हारी भतीजी मेरी दिखी हुई है, वो आदत से मजबूर है, मेरा मतलब ये है मैंने उसे खूब देखा है, है चंचल बाके नैन रे जो सगी भतीजी तेरी, है चंचल बाके नैन रे जो सगी भतीजी तेरी, है आदत की तेज रे, है आदत की तेज रे, बकर दुर्गति मेरी, समझाए कि लाला बोले तुम्हारी भतीजी आदत की तेज है और ऐसी बहू को मुझे घर में नहीं रखना, भले ही दौलत न दे दहेज न दे हमें इससे कोई मतलब नहीं, महाराज बात करने में वो होशियार और वो आते ही आते वो बेटी करे है सब पे अधिकार, ऐसी दौलत के भूखे बन के ना घर को बिगाड़ेंगे, ऐसी दौलत के भूखे बन के ना घर को उजाड़ेंगे, समझाए कि सेठ जी बोले देखो सेठानी तुम इस बात को नहीं जानती, कि घर में दौलत हो या न हो, दहेज से कभी किसी की जिंदगी नहीं कटती, दहेज कोई जरूरी नहीं। हम कोई अच्छी लड़की नेक स्वभाव की होगी उसके साथ अपने पुत्र का विवाह करेंगे, क्योंकि अकेला लड़का है। और जैसी जबात सुनी सो सेठानी उठ के ठाड़ी हुई गई और बोली, सुन हमें से कोई मतलब नहीं। और दोस्तों, अरे भर गई गुस्सा में नारी, मोकू दौलत चाहिए सारी, समझाए कि बोली, देखो बहू चाहे आदत की क्रूर हो, चाहे बुद्धि में हीन हो, चाहे गोरी हो या कारी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, केवल दहेज से मतलब है, हमें दहेज चाहिए। दोस्तों, इधर तो झगड़ा इस तरह से बढ़ता चला गया। सेठ जी बार बार समझा रहे हैं, दौलत कभी किसी की रखी नहीं रहती, अपनी मेहनत का पैसा ही कामयाब होता है। इधर उसी के दूसरी जगह पर, दूसरे मोहल्ला में, दूसरी जगह था गरीब एक जो आदत का भोला भाला था, थी कुआरी बेटी एक घर में, उसे बड़े चाव से पाला था। भाइयों, दूसरे मोहल्ला में एक गरीब आदमी रहता था जिसकी पत्नी भी मर चुकी थी और घर में केवल एक लड़की थी। गरीबी इतनी थी उसके ऊपर, थी नहीं मात उस कन्या की, वो देख पिता को जीती थी, और रूखा सूखा घर में खाकर बाबुल संग समय बिताती थी। बाबुल था बहुत गरीबी में, बबुला था बहुत गरीबी में, जो भी भिक्षा मिल जाती थी बाबुल को भोजन दे करके खुद दिल मसोस रही जाती थी। श्रोताओं, वो गरीब की लड़की जो भी भिक्षा उसके पिता को मिलती थी, भोजन अपने पिताजी को करवाने के बाद में जो बच जाता था उसे खा लिया करती थी। अगर कुछ नहीं रहता था तो बेचारी वैसी भूखे रह करके समय गुजार लेती थी। लेकिन श्रोताओं, जब वो लड़की बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, लेकिन किसी ने उस गरीब को अपने द्वार पर भी नहीं बैठने दिया शादी के नाम से। एक दिन वो गरीब इंसान अपनी लड़की के पास में उदास होकर के बैठ गया तो उस लड़की ने बार बार पूछा कि पिताजी बात क्या है।
तो गोद उठाई के लली, बाप सुनाओ रे।
जब लड़की से सारी कहानी कही उस गरीब ने और कहने लगा कि मैं शादी के लिए जहां भी जाता हूं हर इंसान मुझे ठुकरा देता है, इधर तो वो लड़की अपने मन में यह सोच रही है कि मेरे कारण मेरे पिताजी के ऊपर इतनी मुसीबत है तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। दोस्तों इधर मरने का वो लड़की निश्चय करती है कि गरीबी में जब कोई हमारा हाथ पकड़ने के लिए मंजूर नहीं है, इधर वो सेठ जी के मन में एक बात गूंज गई और लाला ने यह सोचा कि हमारी पत्नी तो खैर नहीं मानती और यह कहती कि दहेज चाहिए, लेकिन हमें दहेज से मतलब नहीं, बात केवल यह है।
लाला करे विचार चतुर होए नारी बहु मेरी प्यारी, होए सील बंत सुकुमार रे हृदय की भोरी भारी।
लाला ने जो बात मन में सोची कि हमें दौलत से मतलब नहीं बहु सीधी हो, लेकिन दिमाग में एक बात और गूंज गई,
मोहल्ला में एक गरीब के मेरे गरीब बड़ो हितकारी ददा हितकारी, बाके घर में सुंदर बिटिया कुआरी, बाके घर में सुंदर बेटी कुआरी,
आ लाला के मन में ये बात गूंजने लगी कि मेरे दूसरे मोहल्ला में एक गरीब आदमी रहता है, बड़ा सीधा है, सज्जन है, और यह भी मैंने देखा है उसके घर में लड़की भी बड़ी सुंदर है, लेकिन बेचारे के पास में देने के लिए कुछ नहीं है, कहीं एहसान हो मेरी औरत मेरी बात पर पानी फेर दे, बात को न माने। लेकिन मन में सोच समझ करके आज वो लाला जो थे उस गरीब के घर की तरफ चले। इधर उस गरीब आदमी ने जब सेठ जी को आते हुए देखा
तो लाला को ला बैठा रे के टूटी चार पाई,
भैया गरीब ने जब आते हुए देखा तो उस टूटी सी चारपाई पर बिठाया,
लाला को लाओ बिठाई रे के टूटी चारपाई, तब हाथ जोड़ के गरीब ने उनसे अर्ज सुनाई, महाराज भेद ने कहमें दियो समझाई, किस कारण से आज गरीब के गए द्वार पे आए, भैया पकड़ी हाथ तो गरीब को तुरत ही लाला बोले, अब तो पकड़ कलाई गरीब की फौरन
के पास जब सेठ जी गए और बड़े आदर से सेठ जी को बैठाला और ये कहा कि श्रीमान आज तो सौभाग्य हमारा जो आप गरीबों की झोपड़ी में आए, कैसे आना हुआ, आखिर बात क्या है? तो बनिया बोला, मैंने सुनी ये घर में ये कलली तुम्हारी है। और बोले देखो मेरे आने का मतलब केवल ये है,
इकलौता बेटा कुआरो है इत कुआरी लली तुम्हारी है।
सेठ जी बोले
इकलौता बेटा कुआरो है इत कुआरी धी तुम्हारी है। मैं बही मांगने आया हूँ, मैं बही मांगने आया हूँ, मेरे पुत्र की बने जो नारी है।
समझाए कि लाला ने जवाब दो है कि भैया मैंने ये सुना है कि तुम्हारे घर में एक लड़की कुआरी है और वो लड़की बड़ी ही सुंदर है, स्वभाव की भी भोली भाली है और लड़का मेरे एक है, केवल दो चार लड़के नहीं है, मेरा मतलब केवल ये है कि हमें तुम्हारी लड़की चाहिए। हाथ जोड़ करके वो गरीब आदमी कहने लगा, लाला जी क्या आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं या हंसी करने के लिए आए हैं? क्योंकि मेरी इस गरीबी को हर इंसान ने ठुकरा दिया और आप ये कहते हैं। जवाब दिया, हाँ मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारी लड़की की जरूरत है। तो वो गरीब आदमी कहने लगा, श्रीमन एक काम करो, तुम अपने घर जाकर के सलाह में ला लो, अगर तुम्हारे घर वाले इस बात पर सहमत हो जाए, तुम्हारी पत्नी सहमत हो जाए तो हम स्वीकार है, हमें ये, और तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। लाला ने समझाया, नहीं घबराइए नहीं, तुम्हारी बेटी मेरी दिखी हुई है, बारेपन से मैंने उसे देखा इसलिए मैं कह रहा हूं। तो गरीब आदमी फिर कहने लगा, देख भैया अभी कुछ नहीं हुआ।
फिर से जोरे हाथ सुनो मेरी बात गिराई उच्चारी, और नारी तुम्हारी चंचल रे ना मानेगी बात तुम्हारी।
समझाए कि वो गरीब आदमी फिर से बोलो भैया,
वो तुमको गाली दे चैन ना ले के नारी तुम्हारी, नारी तुम्हारी। अरे बिना दहेज के हो लली की ख्वारी, बिना दहेज के हो लली की ख्वारी।
समझाए कि गरीब आदमी ने फिर से जबात दोहराई और जवाब दो भैया, देखो तुम्हारी पत्नी जो है वो दूसरे मिजाज की है, कहीं ऐसा ना हो कि बिना दहेज के हमारी बेटी को ठुकरा दे, इसलिए मेरा मतलब सिर्फ ये है कि तुम अब दोबारा जाओ और अपनी पत्नी से सलाह मिला के आओ। तो सेठ जी बोले, देखो वैसे चाहे बात बनी हो जाती, अब औरत की अगर बात कर रहे तो बताओ ऐसी है जो हमारी बात को मानती ना है, और बात दूसरी जह है उसे तो दौलत चाहिए, लड़की से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी बेटी की शादी हम कर रहे, इसलिए तुम मेरा कहना मानो। अरे मानो तुम सीख हमारी, अरे मानो तुम सीख हमारी, देवलली की भमरियां डारी, नाय कछ बोलेगी मेरी नारी, हाँ कर बे बिम न करो या बारी, श्रोताओ बाती सुन के आज लाला की, गरीब दिल में कर तू विचार, सुधर जिंदगी जाए बिटिया की, जो धनवान पति मिल जाए, गरीब आदमी को हाँ करने में जरा भी देर नहीं हुई और दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, भैया अगर तुम्हारी मर्जी है तो हमें स्वीकार है, और तुम एक काम करो बारात लेके आओ, मेरी पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह करो, लेकिन वीरन एक बात का ध्यान रखना, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सेठ जी कहने लगे, घबराइए नहीं, हम शादी करेंगे तुम्हारी बेटी के साथ और हमें चाहिए कुछ नहीं। उसी समय सेठ जी बड़े खुश हुए, अरे सुन के इतनी बात ही ओ हुलसायो है, लई बरात सजाई न बिलम लगायो है, बारात जब सजी जब चली बारात अति सुंदर, जाई एक से एक धुरंधर, चली बारात अति सुंदर, जाई एक से एक धुरंधर, इत दूल्हा बन के आयो, बैठो गाड़ी के अंदर, नहीं सब चायो है, सुन के इतनी बात न बिलम लगायो है, बारात लेकर के लाला जब चले, इत गरीब दुखी अति मन में, है चीजन कोई घर में, गरीब दुखी अति मन में, है चीजन कोई घर में, बराती अपने संग में, क्या दूंगा मैं खातिर में, बहुत घबरायो है, दोस्तों जिस समय बड़े ही हंसी खुशी के साथ वो सेठ जी गए, लेकिन गरीब आदमी के हृदय में यही विचार रहे कि अब हम शादी करेंगे तो कैसे करेंगे, बारात वालों की खातिर करना भी मुश्किल है। और धूमधाम के साथ विवाह तो कर दिया, और सेठ जी ने भी उसकी गरीबी का सम्मान किया, जरा भी देर नहीं रुके और साथ में अपनी बहू की विदा कराई, घर की तरफ चलने के लिए तैयार हुए।